नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बावजूद देश में ऊर्जा सुरक्षा का कोई संकट नहीं है। सीबीआई ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस सहित 8 लोगों पर भ्रष्टाचार के मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज की। प्रयागराज के चंदापुर गांव स्थित एक कोल्ड स्टोरेज का अगला हिस्सा ढह जाने से सहरसा के 3 मजदूरों समेत 4 लोगों की मौत, बिहार के 13 मजदूर घायल। और महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन आज व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ अर्पित करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बावजूद देश में ऊर्जा सुरक्षा का कोई संकट नहीं है। श्री मोदी ने लोकसभा में पश्चिम एशिया में संघर्ष पर अपने बयान में कहा कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
भारत हर आपदा का सामना करता हुए आगे बढ़ रहा है। इस समय युद्ध की परिस्थितियों में भी भारत की नीति और रणनीति देखकर दुनिया के अनेकों देश हैरान है। 28 फरवरी से दुनिया में जो उथल-पुथल मची है, भारत प्रगति के, विकास के, विश्वास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में सरकार ने उर्वरकों की पर्याप्त व्यवस्था की है ताकि वैश्विक संकटों का बोझ किसानों पर न पड़े। श्री मोदी ने कहा कि देश की सभी एजेंसियों, चाहे वह तटीय सुरक्षा हो, सीमा सुरक्षा हो, साइबर सुरक्षा हो या रणनीतिक प्रतिष्ठान हो, सभी को सतर्क रखा गया है। उन्होंने कहा कि संघर्ष का एकमात्र समाधान संवाद और कूटनीति है। इधर प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में दोपहर 2 बजे पश्चिम एशिया में जारी संकट पर वक्तव्य देंगे। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि प्रदेश में पिछले दिनों आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुई क्षति का आकलन करवाया जा रहा है। वैशाली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 7 से 8 जिलों में फसल बर्बाद होने की सूचना मिली है। श्री यादव ने कहा कि किसानों को नियमानुसार फसल क्षति का मुआवजा दिया जाएगा।
अचानक बड़े पैमाने पर आंधी, तूफान, पानी सब आ गया, तो 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट में किसानों के फसल की बर्बादी हुई। उसके आकलन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है और आगे आने वाले दिन में उनकी मुआवजा की व्यवस्था हो सके इसका व्यवस्था हम करेंगे। किसानों की चिंता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार करते रहते हैं और किसानों के हित में लगातार काम करते रहते हैं।
दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पिछले दिनों दरभंगा सहित उत्तर बिहार में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की मांग लोकसभा में उठाई। श्री ठाकुर ने प्रभावित किसानों के लिए केंद्र सरकार से उचित मुआवजे की मांग की।
दरभंगा सहित संपूर्ण उत्तर बिहार क्षेत्र में असमय वर्षा, तेज आंधी, तूफान एवं ओलावृष्टि के कारण गेहूं, मक्का सहित अन्य रबी फसल के भारी नुकसान भेल। अनेकों स्थान पर स्थिति अत्यंत चिंताजनक। एहन परिस्थिति में अन्य दाता किसान के समक्ष आजीविका के संकट उत्पन्न भ गेल हन। सभापति महोदय, हम बिहार सरकार सँ सेहो अनुरोध करै छी जे अविलंब फसल क्षति मुआवजा के लेल आवश्यक कदम उठाएल जाए।
इधर राज्यसभा में सांसद डॉक्टर भीम सिंह ने नाई जाति के विकास के लिए केंद्र सरकार से राष्ट्रीय केश कला बोर्ड के गठन की मांग की। केंद्र सरकार ने पटना में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के एक्सटेंशन सेंटर को स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पहल से राज्य में पैकेजिंग उद्योग, निर्यात गतिविधियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत आज कैमूर और रोहतास जिले का दौरा करेंगे। श्री कुमार कैमूर जिले में 37 करोड़ रुपए लागत वाली 43 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही वे 162 करोड़ रुपए की लागत से 161 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं रोहतास में मुख्यमंत्री 321 करोड़ रुपए लागत वाली 129 योजनाओं का शिलान्यास और 159 करोड़ रुपए लागत वाली 179 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। श्री कुमार दोनों जिले में चल रही विकास और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। साथ ही उनका जनसंवाद का भी कार्यक्रम है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार की नई सरकार के स्वरूप को लेकर एनडीए के सभी दलों के बीच सहमति बन गई है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी।
बिहार के अगले मुख्यमंत्री की घोषणा बहुत जल्द कर दी जाएगी। गठबंधन के भीतर इसको लेकर बातचीत हुई है। मैं इस रेस में ना था ना हूँ। आज की तारीख में गठबंधन के भीतर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, ये हम लोग जरूर।
सीबीआई ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस सहित 8 लोगों पर भ्रष्टाचार के मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। संजीव हंस पर तत्कालीन केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्री के निजी सचिव रहते भ्रष्टाचार का आरोप है। उन पर एक बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए 1 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप है। सीबीआई की दिल्ली इकाई ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रयागराज के फाफा मऊ के चंदापुर गांव स्थित एक कोल्ड स्टोरेज का अगला हिस्सा ढह जाने से सहरसा के 3 मजदूरों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 14 घायल हो गए, इनमें से 13 बिहार के हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अचानक तेज धमाके के साथ कोल्ड स्टोरेज का एक हिस्सा ढह गया। हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन आज व्रती अस्ताचल कामी सूर्य को अर्घ अर्पित करेंगे। चार दिवसीय इस पर्व के अंतिम दिन कल उदयमान सूर्य को अर्घ अर्पित करने के साथ ही इस महापर्व का समापन हो जाएगा। इससे पूर्व 4 दिवसीय महाअनुष्ठान के दूसरे दिन कल व्रतियों ने भगवान भास्कर को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला निराहार व्रत शुरू हो गया है, जो पर्व के समापन तक जारी रहेगा। छठ को लेकर पूरे प्रदेश का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। जगह जगह मठ मंदिरों की सजावट की गई है। श्रद्धालु गंगा, गंडक, कोसी, सोन, बागमती और राज्य की अन्य नदियों के तट और तालाबों में छठ पूजा करेंगे। औरंगाबाद के प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर, नालंदा के ओंगारी धाम, भोजपुर के बेलाउर सूर्य मंदिर और राज्य के अन्य स्थानों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु छठ पूजा कर रहे हैं। प्रदेश के सभी 101 बुनियाद केंद्रों में 1 महीने तक निःशुल्क नेत्र जांच होगी। इस दौरान 1,00,000 चश्मे वितरित किए जाएंगे। समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस पहल की कल पटना में शुरुआत हुई। समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने बताया कि दृष्टि दोष से ग्रसित कोई भी व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर 1800345626 पर संपर्क कर नजदीकी शिविर की तिथि की जानकारी ले सकते हैं। विश्व जल दिवस पर बिहार को 2 सम्मान मिले हैं। जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तत्वावधान में नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड वाटर डे कॉन्क्लेव में राज्य को सम्मानित किया गया। सिंचाई गणना परियोजनाओं से संबंधित सभी कार्यों को पूरा करने के लिए जल संसाधन विभाग को सम्मानित किया गया। वहीं योजना एवं विकास विभाग को भी जल संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण गणनाओं के सफल संचालन के लिए सम्मानित किया गया। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ केवल सीमाओं की रक्षा नहीं बल्कि व्यापक अर्थों में यह हमारी सांस्कृतिक चेतना मूल्यों और आदर्शों की रक्षा से भी जुड़ा है। श्री हसनैन छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय में आयोजित भारतीय दर्शन परिषद के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे।
नेशनल सिक्योरिटी का अर्थ केवल सीमाओं की रक्षा नहीं होती बल्कि अपनी संस्कृति अपनी सोच और अपने मूल्यों की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। इनको करना बहुत नहायत जरूरी होता है।
एकलव्य खेल प्रशिक्षण केंद्रों में नामांकन के लिए 27 मार्च से 10 अप्रैल तक ट्रायल का आयोजन किया जाएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकर ने बताया कि अलग अलग 17 खेल विधाओं में 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक और बालिका खिलाड़ियों का चयन ट्रायल के माध्यम से किया जाएगा। ट्रायल की विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की वेबसाइट और सभी सोशल मीडिया साइट पर उपलब्ध है। पटना के मालसलामी स्थित एक घर में जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी कर 10 वाणिज्यिक समेत 32 गैस सिलेंडर बरामद किया है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर मकान मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के अल्पना मार्केट के पास अपराधियों ने एक फाइनेंस कंपनी के कर्मी से हथियार के बल पर 20 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पटना पुलिस ने कपड़ा धुलाई की एक कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी के आरोपी राहुल कालरा और उसकी पत्नी रुचिका कालरा को गिरफ्तार किया है। दोनों को हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया गया। आर्थिक अपराध इकाई ने पीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड के अभियुक्त प्रवीण कुमार सिन्हा को पटना के करबिगिया से गिरफ्तार किया है। वह विभिन्न पेपर लीक कांडों के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का सहयोगी है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, इंटर में 85.19% पास, 26 टॉपर में 20 लड़कियां। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, जंग के असर से निपटने को कोरोना जैसी तैयारी जरूरी। दैनिक जागरण ने समृद्धि यात्रा की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, समर्थन देते रहिए, निरंतर विकास करता रहेगा बिहार, मुख्यमंत्री। दैनिक भास्कर ने लिखा है, ट्रंप का युद्ध विराम, ईरान का इनकार। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, विश्व जल दिवस पर बिहार को मिला राष्ट्रीय सम्मान। आज अखबार की सुर्खी है, मैट्रिक का परीक्षा फल एक सप्ताह में। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बावजूद देश में ऊर्जा सुरक्षा का कोई संकट नहीं है। सीबीआई ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस सहित 8 लोगों पर भ्रष्टाचार के मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज की। प्रयागराज के चंदापुर गांव स्थित एक कोल्ड स्टोरेज का अगला हिस्सा ढह जाने से सहरसा के 3 मजदूरों समेत 4 लोगों की मौत, बिहार के 13 मजदूर घायल। और महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन आज व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ अर्पित करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।